Market Mantra. Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, also being Sunday, we'll be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2342-1050. And 2331-0464. And do not forget to prefix 011 before these telephone numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
जी, बहुत धन्यवाद.
पहले हेडलाइंस के साथ निश्चित.
Welcome, Asutosh. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds special campaign that contributed over 2,000 crore rupees to the state's exchequer since 2021. Domestic markets to focus on corporate earnings, FII and DI activities, amongst other factors, for queues next week. And global crude oil prices rise 3% last week. Brent ended the week near $74 per barrel.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 से 2000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त करने वाले विशेष अभियान के चौथे संस्करण की सराहना की. अगले हफ्ते देश के बाजारों का फोकस कंपनियों की आमदनी और विदेशी और घरेलू निवेशकों पर रहने की संभावना. और पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3% बढ़ी. ब्रेंट क्रूड $74 प्रति बैरल. आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशेष अभियान के चौथे संस्करण की सराहना की. इस अभियान के फलस्वरूप सरकारी खजाने को वर्ष 2021 के बाद से कचरा बेचने पर 2,364 करोड़ रुपए के राजस्व समेत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की एक पोस्ट के उत्तर में श्री मोदी ने कहा कि अभियान की सफलता दर्शाती है कि सामूहिक प्रयासों से ठोस परिणाम हासिल किए जा सकते हैं और स्वच्छता तथा आर्थिक विवेक को प्रोत्साहन दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि कुशल प्रबंधन और सक्रिय प्रयासों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं. आइए पहले कॉलर के पास चलते हैं. दिल्ली से योगेश हमारे साथ हैं. योगेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
जी, आप सभी को नमस्कार.
नमस्कार.
तो सर, मेरा जो सवाल है, मेरे दो सवाल हैं. पहला सवाल तो मेरा ये है कि अक्सर ये सलाह दी जाती है कि इंडिया के बाहर भी हमारे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए. तो क्योंकि मैं मार्केट का रिटर्न देख रहा था, जो कैक है फ्रांस का, उसका 5 साल का रिटर्न केवल 24% दिखा रहा है और हैंगसेंग का -25% है. और आपके ज्यादातर जो इंडेक्स है बाहर के, वो इंडिया से बहुत पीछे चल रहे हैं. तो कौन सी कंट्री में हमारे को डालना चाहिए अगर हम ग्लोबली डाइवर्सिफाई करते हैं? ये मेरा पहला सवाल है. और दूसरा सवाल ये है कि इंडिया के इंडेक्स के अलावा, सेंसेक्स के अलावा, कौन सी ऐसी कंट्री का इंडेक्स है जिसने ज्यादा ग्रोथ दिखाई हो? कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका शेयर मार्केट सबसे तेज भागा है इंडिया को अगर हम छोड़ दें तो?
जी देखिए, काफ़ी अहम सवाल है आपका. ट्रेडिशनली इंडियन इन्वेस्टर्स, बिकॉज देव बीन वेकिंग अप टू इन्वेस्टिंग इन इंडिया, तो पहला तो ये होता है कि आप डोमेस्टिक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें. बट जैसे जैसे आप थोड़ा मैच्योर होते हैं, तो एक अच्छी सलाह है कि आप आपका पैसा थोड़ा इंटरनेशनली डाइवर्सिफाइड हो. क्योंकि कंट्री स्पेसिफिक अगर कोई रिस्क होता है, कुछ अकस्मात कुछ कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स से मार्केट क्रैश करता है, तो आपका सारा पैसा रिस्क पर नहीं रहता है. अब अगर हम बात करते हैं कि कहाँ डाइवर्सिफाई करें, जो मुझे मेरी निजी राय में कुछ जो यूएस के इंडेक्स हैं वो इंडियन निवेशक को अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दिलाने में समर्थ हैं मेरी राय में। पर्टिकुलरली मैं नाम लूँगा नैस्डैक 100 इंडेक्स का। और मैं क्यों इसको रिकमेंड करूँगा, हालांकि इसको अक्सर माना जाता है कि ये काफ़ी टेक सेंट्रिक इंडेक्स है, तो क्या ये कॉन्सेंट्रेटेड इंडेक्स है? मेरी राय में ऐसा नहीं है। एक तो दो तीन रीज़न है इसके। एक तो इसका रिटर्न अगर आप हिस्टोरिक देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहा है। इसमें वाकई में जो वेल्थ कंपाउंडर टाइप की कंपनीज रही हैं, गूगल, फेसबुक, अल्फाबेट, इस टाइप की कंपनीज इस इंडेक्स में हैवी वेट्स हैं। और ये जेन्युइन डाइवर्सिफिकेशन है इंडियन इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इस टाइप के बिजनेसेस, इस टाइप के बिजनेस मॉडल्स आपको इंडियन लिस्टेड यूनिवर्स में अक्सर नहीं देखे गए हैं। और कहने को ये इंडेक्स यूएस फोकस्ड है, लेकिन आप ये तमाम कंपनियां देखेंगे तो इनके खुद के बिजनेस इतने ग्लोबली डाइवर्सिफाइड हैं, इनका जो रेवेन्यू बेस है वो खुद इतना ग्लोबलाइज्ड है कि ये यूएस में लिस्टेड मात्र हैं, लेकिन एक्चुअली इनके बिजनेस जो हैं ट्रूली ग्लोबली फैले हुए हैं। तो नैस्डैक 100 एक मेरी राय में एक अच्छा इंडेक्स है। हालांकि अपॉर्चुनिटीज कुछ कम है अभी इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इन फंड्स पे, अधिकतर फंड्स पे गेट्स लगे हुए हैं, ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम लिमिट्स हिट किए हुए हैं, जो कि जितना पैसा इनको बाहर निवेश करने की परमिशन है। तो जैसे ये लिमिट्स में थोड़ी रिलैक्सेशन आती है तो आप इस इंडेक्स को देख सकते हैं अपने इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के लिए।
एंड आल्सो आशुतोष, एट द एंड ऑफ द डे वी मस्ट आल्सो नॉट फॉरगेट द इंडियन ड्रीम स्टोरी।
Besides
the global markets. Well, next in line, we are joining by Rakesh from Shimla. Rakesh, welcome to the show.
Namaskar.
Namaskar, Rakesh ji.
तो मैं एक ग्राहक हूँ और मैं मेरे बैंक में 25 लाख रुपया है, तो मैं म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से लगा सकता हूँ, या शेयर मार्केट में लगाऊ या सोना खरीदू या म्यूचुअल फंड में लगाऊ, और कैसे लगा सकता हूँ मैं?
देखिए, अगर आपको पहले निवेश की बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप बहुत इससे परिचित नहीं है, तो बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड का रूट लें, डायरेक्टली शेयर मार्केट में खुद से निवेश ना करें। म्यूचुअल फंड्स इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने को काफ़ी आसान बना देते हैं एक आम निवेशक के लिए। तो मेरी सलाह में आप दो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, जैसे कि ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड, मिराए का एक फंड है, SBI का फंड है एग्रेसिव हाइब्रिड, इस टाइप के आप कोई भी दो फंड लीजिए, उनमें अपना पैसा स्प्रेड करके SIP के जरिए लगाइए। आपने बोला 25 लाख रुपए आपके पास हैं, आप कितना इसमें से निवेश करना चाहते हैं, कितने साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, और ये रकम आपके लिए कितनी अहम है, उस हिसाब से आप देखिए। अगर ये रकम आपके लिए बहुत मायने रखती है तो इसको कम से कम 1.5-2 साल का SIP करके इस पैसे को स्प्रेड करिए, महीने दर महीने इसको लगाइए।
जी, अगले कॉलर है बेंगलुरु से, अयान गांगुली। अयान, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
मेरा नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को, मेरा नमस्कार आशुतोष जी को भी। मैं रेगुलरली इस प्रोग्राम को सुनता हूँ और मुझे बहुत हेल्प मिलता है इस प्रोग्राम से। आशुतोष जी से मेरा एक सवाल है। सर, मैं अभी 34 इयर्स का हूँ और मैं पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, लेकिन क्या है कि मेरा कुछ परसेंटेज ऑफ एलोकेशन थोड़ा सा स्मॉल कैप मिड कैप में है, थोड़ा सा थीमेटिक सेक्टरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग फंड्स की तरफ भी थोड़ा थोड़ा है। ऐसे 4-5 फंड्स है जहाँ पे मैं करता हूँ, बाकी और भी कुछ फंड्स है जहाँ पे मैं करता हूँ। तो सर, आपका मेरे लिए क्या सलाह रहेगा, क्या क्योंकि मैं यंग हूँ और मैं लंबे समय तक निवेश करने के लिए सोच रहा हूँ आने वाले 10-15-20 सालों के लिए, तो क्या मुझे इस फंड्स में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, इसमें बने रहना चाहिए, कि थोड़ा बहुत रीबैलेंसिंग या रीएलोकेशन की जरूरत है? थैंक यू सर।
जी बिल्कुल, मिड और स्मॉल कैप फंड्स मेरे ख्याल आपके लिए सूटेबल रहेंगे। आपने बताया कि आप यंग हैं, आपके पास एक लंबा टाइम होराइजन है और आप कुछ साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप फेमिलियर हैं मार्केट से, थोड़ा आपको इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का एक्सपीरियंस, एक अनुभव एक लेवल का ऑलरेडी है आपके पास। मिड और स्मॉल कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि ये फंड्स को आप इनको एक सप्लीमेंट्री एलोकेशन अपनी मानिए, ये फंड्स आपका पोर्टफोलियो डोमिनेट ना करने लगे। तो अगर जैसे अगर मिड और स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 2-3 साल में बेहतर रिटर्न दिए हैं, तो अगर उनका प्रोपोर्शन आपके पोर्टफोलियो में बहुत बढ़ गया है, तो उसको थोड़ा सा रीबैलेंस करके आप कोर फंड्स, जो कि आपके पास कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स, कुछ वैल्यू फंड्स, टैक्स सेविंग में अगर आपने इन्वेस्ट किया ईएलएसएस फंड्स, ये आपकी कोर होल्डिंग होनी चाहिए। अधिकतर आपका पैसा 50-60% 70% पैसा इन फंड्स में रहना चाहिए। बचा हुआ 25-30% पैसे को आप मिड एंड स्मॉल कैप टाइप फंड्स में लगा सकते हैं रिटर्न एनहेंसमेंट के लिए। अगर इनका प्रतिशत उसे बहुत बढ़ने लगे तो आप थोड़ा उसको रीबैलेंस करिए, उनमें से थोड़ा एग्जिट कर फ्लेक्सी कैप की साइड जाइए। और ये रीबैलेंसिंग को भी बहुत ज्यादा मत करिए, क्योंकि अननेसेसरीली आपको टैक्स इंसिडेंट्स का जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साल में एक बार कभी आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए, देखिए अगर जरूरत है तो थोड़ा रीबैलेंस करिए। सेक्टर थीमेटिक फंड से थोड़ा बचें, क्योंकि ये काफी अपॉर्चुनिस्टिक फंड्स होते हैं और मेरे हिसाब से कोर फंड्स एक आम निवेशक के लिए मोर देन सफिशियंट है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए।
नेक्स्ट इन लाइन इज यशपाल फ्रॉम दिल्ली। यशपाल, वेलकम टू द शो।
गुड इवनिंग टीम मार्केट मंत्रा।
गुड इवनिंग।
माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग थीमेटिक फंड्स ओनली। एक्चुअली आई इन्वेस्टेड अ बिग अमाउंट इन एसबीआई पीएसयू फंड लास्ट 5 months एंड एसबीआई इनोवेटिव रिसेंटली 3-4 months बैक। एंड आई हैव लमसम दिस थिंग एचडीएफसी डिफेंस एसआईपी एचडीएफसी डिफेंस आल्सो फॉर द लास्ट 5 months। सो दिस स्कीम्स आर शोइंग नेगेटिव रिटर्न।
अनफॉर्चुनेटली दोज आर द पेरिल्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन यू नो सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स विच आर वेरी नैरोली डिफाइंड। एंड यू नो आई थिंक यू इन्वेस्टेड परहैप्स इन अ पीएसयू फंड। आई थिंक यू मेंशनड एसबीआई पीएसयू व्हाइल यू वर स्पीकिंग। सो यू नो क्लियरली यू वुड हैव फॉलन फॉर इन्वेस्टिंग इन दीज फंड्स लुकिंग एट देयर पास्ट रिटर्न्स विच हैव बीन ब्लॉकबस्टर। बट यू नो अगेन when some stocks or when you know such funds rise ahead of themselves and there is you know inevitable correction to restore some balance, I think a strategy where you have all your money invested in sector and thematic funds is not advisable. So certainly you can have these, as I was mentioning earlier, that you can have these only as supplementary allocations of maybe you know 10-15%, but remaining of your money should be in core diversified equity funds. So if you are making incremental investments, then you know I would advise that stop investing in these funds and increasingly shift your new investments to more core funds, so that you know in some months there is some you know rebalancing which automatically happens by way of new money redirected to more diversified funds. Otherwise you need to exit some of this money and invest in more diversified options.
Ji agle caller hai Gurugram se Nitin. Nitin swagat hai aapka, sawal puche. Nitin ab hamari awaaz sun pa rahe hain? Lagta hai Nitin ke sath hamara sampark nahi hai abhi. आशुतोष, अभी दो कॉलर्स ने थीमेटिक फंड्स की बात की थी और इसके लिए तो कई वर्षों से हमारे विशेषज्ञ लोगों को अलर्ट करते रहे हैं, सतर्क करते रहे हैं, खास करके जो बहुत बुनियादी निवेशक हैं उनको आगाह करते रहे हैं कि आप इन चक्करों में ना पड़ें, थीमेटिक के या सेक्टोरल फंड्स के झमेले में ना पड़ें, क्योंकि इससे समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है या आपको बेसिकली आप म्यूचुअल फंड में आते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए और वो हासिल नहीं होता। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले भी जैसे अभी उन्होंने डिफेंस का भी नाम लिया था, तो कुछ उदाहरण देकर आप समझा सकते हैं कि क्या नुकसान है थीमेटिक में जाने के, जैसे इस तरह से अगर हम पीएसयू या डिफेंस की बात लें तो।
देखिए जो आपने कहा वो सही है कि एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मेन पर्पस या मेन चार्म यही है कि आप 500 रुपए के एसआईपी में भी आपको 35-40 स्टॉक का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है, जो कि एक आम निवेशक के लिए निवेश की प्रतिक्रिया को डेमोक्रेटाइज करने का एक बेहतरीन तरीका है। और आप म्यूचुअल फंड में इसीलिए आते हैं क्योंकि आप फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज पे डिपेंड करना चाहते हैं कि ये कॉल फंड मैनेजर को लेने दीजिए कि कौन से स्टॉक्स कौन से सेक्टर्स में इस वक्त निवेश करने का सही टाइम है। अगर आप खुद से कोई थीमेटिक या सेक्टर फंड चुनते हैं तो एक तरह से यू आर स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ द फंड मैनेजर। आप ये कॉल ले रहे हैं कि मुझे इस सेक्टर में जाना है या मुझे इस पर्टिकुलर थीम में निवेश करना है, तो जो आधा काम जो आप फंड मैनेजर पर छोड़ना चाहते थे वो तो जिम्मेदारी आपने खुद ही ले ली। तो और उसके बाद ये फंड्स जो है वॉलेटाइल बहुत होते हैं, क्योंकि एक सेक्टर कोई भी सेक्टर लगातार चलता रहे ऐसा देखने में नहीं आता है। inevitably, you know, markets rise and markets fall, and sector funds tend to be very volatile, and you know they impact psychologically. Kabhi-kabhi koi sector agar structural downfall mein chala jata hai, to usme niveshakon ko kafi nuksan bhi jhelna pad sakta hai. To diversified rahiye, keep it simple. सेक्टर और थीमेटिक फंड से बचे. पर्टिकुलरली आपने अभी डिफेंस एक फंड का नाम लिया, अगर आप उसकी डिटेल में देखेंगे तो देखेंगे दो या तीन स्टॉक, मात्र दो या तीन स्टॉक इन फंड्स का 45-50% पोर्टफोलियो अकाउंट फॉर करते हैं. तो बेसिकली अगर आप डिफेंस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका अधिकतर पैसा सिर्फ दो या तीन स्टॉक में ही लगा हुआ है. तो जाहिर सी बात है कि जब ये दो तीन स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, लेकिन जब ये स्टॉक परफॉर्म करना बंद कर देंगे तो आपको उसकी वजह से नुकसान भी उठाना पड़ेगा. तो मेरे हिसाब से ये निवेश की शैली रिकमेंडेड नहीं है. अगर आपको किसी सेक्टर पे कुछ खास कन्विक्शन है, आपको काफ़ी ज़्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक है किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे, तो उसमें आप अपना 8-10% पैसा लगाएं, वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन आपका कोर पैसा डाइवर्सिफाइड ही रहना चाहिए.
गुरुग्राम से नितिन जुड़ गए हैं हमारे साथ. नितिन स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
नमस्कार जी.
नमस्कार
सर, हम नए ग्राहक हैं, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है, और हमने ज्यादातर अपना पैसा उसमें बैंक में एफडी में लगा रखा है. हमने अपनी एफडी को चेंज कराया और उसमें हमने रिव्यू कराई, तो उसके उस समय हमें कुछ सलाह दी गई बैंक के थ्रू कि हमारे पास एक स्कीम है, प्राइवेट फंड जो बैंक है उन्होंने हमें ये बताया कि आप 2 लाख रुपये साल का दीजिए और आपको रिटर्न 1 साल बाद हम आपको 84-83 हज़ार रुपये देंगे. वो आपको 12 साल तक आपको 2-2 लाख रुपये ही देना पड़ेगा और आपको हर साल 83-84 हज़ार रुपये जो आपको रिटर्न आएगा वो आपको आता रहेगा. 12 साल के बाद आपने कुछ भी नहीं देना, फिर भी आपको 13वें साल से लेकर 25 साल तक आपके पास 83 हज़ार आता रहेगा. तो इस तरह से ये आपकी जो मैच्योरिटी की डेट है 25 साल की हो जाएगी. पर इसमें एक ये बात भी है, यंग एज के बच्चों के लिए ही स्कीम है, जैसे 25-27-28-30 साल के बच्चों की, जो 25 साल के बाद उनको ये मैच्योरिटी मिलेगी. पर ये बात हमें समझ नहीं आई कि ये इसमें इनका इंश्योरेंस भी उन्होंने इंक्लूड कर रखा है कि आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा अगर बाई चांस कुछ हो जाता है, तो बीच में ही आपको सारा पैसा जितना टोटल 48 लाख रुपये मिल रहा है वो मिल जाएगा. तो ये समझ नहीं आ रही हमें म्यूचुअल फंड में जाने के लिए, ये फंड मैनेजर कहाँ से संपर्क करें, ये ऐसी कौन सा कॉन्टेक्ट है जो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर से डायरेक्ट हम मिले और वहाँ से हेल्प लें और अपना म्यूचुअल फंड में हम इंटरेस्ट बढ़ाएं.
देखिए पहले तो इस प्रोडक्ट से आप बचें, जैसा कि आपने कहा कि ये एक यूलिप टाइप का प्रोडक्ट है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं और आमतौर पर देखा गया है कि निवेशकों के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होते हैं. तो मेरी सलाह में तो आप इस प्रोडक्ट को थोड़ा स्केप्टिसिज्म के साथ देखिए, थोड़ा शक की निगाह से देखिए और इससे बचिए. म्यूचुअल फंड्स मेरी राय में हमेशा ही लो कॉस्ट, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और काफ़ी वेल मैनेज्ड प्रोडक्ट्स हैं. अब सवाल है कि आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत कैसे करें. तो देखिए दो तीन जरिए होते हैं, आप जहाँ पे आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो ही अधिकतर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं म्यूचुअल फंड्स के भी, आप उन्हीं के थ्रू म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं. या फिर अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने में थोड़े मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में अगर आप फेमिलियर हैं या कंफर्टेबल हैं, बैंकिंग भी अगर आप ऑनलाइन करने में कंफर्टेबल रहते हैं, तो आजकल मैक्सिमम जो कि AMCs हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो आप वो जरिया देखिए, आप शुरुआती निवेशक हैं, पहले आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से शुरुआत करिए. जैसे मैं अभी भी पहले भी एक श्रोता को सलाह दे रहा था, तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से शुरू करिए. जैसे एक ICICI अप्रूव का इक्विटी एंड डेट फंड है, आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी वहां से निवेश शुरू कर सकते हैं. तो आप मेरी सलाह में ऐसा कुछ ट्राई करिए, या अपने बैंक ब्रांच के जरिए भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं.
Our next caller is Virendra from Karnataka. Virendra, welcome to the show.
Thank you, sir. Thank you, Market Mantra team. Good evening.
Good evening, Virendra.
Sir, I have been investing through SIP since last 1 year. I am 48 years now. I am putting 14,000 rupees per month into 9 funds. Is it too many funds or should I reduce the number? Question one. And also when I went through the portfolio analysis, it shows 55% of my funds are going to large cap, and some 25-30% into mid cap, and some 15% into small cap. Do you suggest any changes in my funds, or should I continue with? Thank you.
Yeah, so certainly your question number one, is it too many? Certainly too many. You know, nine is just too many funds. Also, you know, considering the scale of your investment, you know, over a period of time, one can understand if you've been investing for several years, you know, there can be a natural tendency to have slightly larger number of funds, because over a period of time, if some funds become underperformers, you stop investing in them and start your SIPs in new funds. So there can be a tendency that you have, you know, slightly a higher number of funds than what could be an ideal range. But you mentioned that you started your SIP of 14,000 per month about 1 year back. In that context, I would say 9 is certainly looking like a big number. Perhaps, you know, 3 to 4 funds can be more than sufficient and can provide you with adequate diversification with the kind of market cap breakup that you just mentioned. And I think there is no specific reason to worry about the market cap allocation that you mentioned. But try and see, you know, how you can reduce the number of funds. And some of the ground rules that I can tell you are that if you have any sector thematic funds, get rid of them. If you have any funds which are less than 5% of your portfolio weightage, you know, seriously consider whether you should have them. Either you increase allocation to them or you exit them, because they are only increasing the crowd. If these funds tomorrow become blockbuster, even then they are not going to have a big impact on your portfolio returns, because they have a very small weightage in the first place. So any such funds which are too small a holding for you, either you increase their weightage, which means you exit something else, or you exit them. So, you know, through this, try and consolidate your portfolio and come down to no more than 3 to 4 funds. And I think it will make it more manageable, and, you know, you would be able to track them better.
अगले कॉलर हैं हैदराबाद से सौरभ. सौरभ, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
सौरभ, can you hear us?
हेलो
जी सौरभ, अपने रेडियो सेट की आवाज कम कर ले. स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
हेलो
जी सौरभ.
जी मैं पंकज बोल रहा हूँ कोलकाता.
अच्छा कोलकाता से जुड़ गए हम. पंकज हमारे साथ हैं. जी
पंकज स्वागत है. नमस्ते
जी, सवाल पूछें अपना.
हाँ जी सर, हमारा सवाल यह है कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही SIP स्टार्ट किया है, तो हमें किसी ने सुझाव दिया था कि हमारा बैंक अकाउंट SBI में है, तो उन्होंने कहा था कि आप बैंक से भी करवा सकते हैं. तो वहाँ हमने SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड नाम से एक SIP स्टार्ट किया, तो हमें यह जानना है कि यह किस तरह का, ये क्या सही सलामत, ये सही है कि या इसको मैं बदल कर कुछ और करना चाहिए, बस यही जानना है हमें.
जी देखिए, SBI इक्विटी हाइब्रिड एक शुरुआती निवेशक के लिए इस टाइप के फंड्स जनरली रिकमेंडेड हैं, क्योंकि ये फंड्स करीब 70-75% पैसा आपका मार्केट में, इक्विटी मार्केट में लगाते हैं, बचा हुआ पैसा फिक्स इनकम में रहता है. तो आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये फंड्स थोड़ा कम गिरते हैं, शुरुआती निवेशक के लिए इसलिए थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रहता है. अगर मैं इस स्पेसिफिक फंड की बात करूं, फंड लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अच्छा है, अच्छी फंड मैनेजमेंट टीम है. हालांकि पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, तो परफॉर्मेंस निराशाजनक रही है. तो इसको आप, अगर आप ऑलरेडी इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं तो आप बने रहिए, ऐसा कुछ इसमें खराबी नहीं है फंड में, थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है लेकिन फिर भी बुरा फंड नहीं है.
नेक्स्ट कॉलर इज SPS जैन फ्रॉम ग्रेटर नोएडा. मिस्टर जैन वेलकम. ओके इट सीम्स reconnect to Mr. Jain, but in the meanwhile we have some news. And for the markets, after a holiday truncated week, the market is expected to consolidate further with stock specific action due to the last lot of September quarter results, US inflation, Fed Chair Jerome Powell's speech, India CPI inflation and FII activity, among others. The market will remain shut on November 15th for Guru Nanak Jayanti. Next week, more than 2,500 companies will declare the September quarter results, including ONGC, Britannia, Hindalco, Eicher Motors, Grasim, Hyundai Motors and Hero MotoCorp, etc. Apart from earnings, there will be focus on the CPI and WPI inflation for October, which will be announced on November 12th and 14th, respectively. Globally, investors will keep an eye on US inflation and retail sales in October. Furthermore, global markets will monitor speeches by several Fed officials during the week, including Powell's on November 15th. The Eurozone's GDP numbers, as well as preliminary estimates for the UK and Japan's Q3 GDP figures, are also due next week, while China will release its retail sales, industrial production, house price index, and unemployment numbers for October. Market participants will also closely monitor the FII and DII activity. The street will also watch oil prices, which have been hovering below the $75 mark for several weeks now. And Mr. SPS Jain has joined from Greater Noida.
Namaskar ji.
Namaskar.
I think I am audible now.
Yes, loud and clear.
Mera expert se question hai ki abhi jo pichle ek saal mein gold fund se kafi acha return mila hai aur abhi jo political situations mein kuch changes aa rahe hain, kuch stability aayegi, to kya isko मार्केट का गोल्ड का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे आने वाले साल दो साल में भी इतना ही रहेगा और इन सच ए सिचुएशन इज इट एडवाइजेबल टू बुक सम प्रॉफिट फ्रॉम द गोल्ड.
देखिए आगे आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा इसके बारे में कुछ भी निश्चित तौर से कहना बड़ा मुश्किल है, तो मैं कुछ भी ऐसी राय देने से तो बचूंगा. लेकिन आप गोल्ड का जो पर्पस होता है एक पोर्टफोलियो में उसके बारे में आपको कुछ सुझाव दे सकता हूँ. एंड यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली. देखिए गोल्ड एक हेज की तरह पोर्टफोलियो में होता है, क्योंकि जब इक्विटी मार्केट्स देखा गया उनमें गिरावट आती है तब गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है. तो गोल्ड की थोड़ी सी मात्रा में अगर आप पोर्टफोलियो में रखें तो मेरा ख्याल उसका उतना ही पर्पस है. लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं तो गोल्ड बहुत इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो मेरे हिसाब से गोल्ड एक बहुत डोमिनेंट प्रोपोर्शन तो आपके पोर्टफोलियो का सर्टेनली नहीं होना चाहिए.
जी अगले कॉलर है पटना से संदीप. संदीप स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
जी नमस्कार, मार्केट मंत्रालय टीम को मेरा नमस्कार.
जी संक्षेप में प्रश्न पूछें संदीप.
सर मेरा क्वेश्चन है कि ये क्वांट स्मॉल कैप फंड और क्वांट का जो मिड कैप फंड है इसका पिछले 6 महीना का परफॉर्मेंस काफी अच्छा नहीं दिख रहा है, इवन निगेटिव में रिटर्न जा रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या अभी मुझे इस फंड से स्विच करके दूसरा फंड में चले जाना चाहिए क्या?
देखिए अच्छे से अच्छे फंड के लाइफ में भी कुछ ऐसे फेज आते हैं कि जब वो अंडर परफॉर्म करता है. क्वांट एक जनरली थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटजी के रूप में देखा जाता है, थोड़े एग्रेसिवली पोर्टफोलियो मैनेज होते हैं, हाई चर्निंग होती है, तो कभी कभी अगर मार्केट उनकी स्ट्रेटजी की कंड्यूसिव नहीं होगी तो वो अंडर परफॉर्म करेंगे. बेस्ट सोल्यूशन इसका यह है कि आप डाइवर्सिफाइड रहें. एक AMC में ही अगर आपका सारा पैसा लगा रहेगा तो ऐसे निराशा के मौके आएंगे. थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से उसमें बने रहें.
And moving on to oil now, global crude oil prices rose nearly 3% last week as the market settled in after the US election results and speculations about stimulus efforts from the world's number one importer, China. Brent crude oil futures ended the week at $73.87 per barrel on Friday, while the US crude settled at $70.35 per barrel. Meanwhile, top oil importer China's latest round of fiscal support disappointed oil investors. Chinese authorities announced a package easing debt repayment strains for local governments, but those measures failed to enthuse. Donald Trump presidency may be net bearish for crude prices on higher domestic production and tariffs that will weigh on the Chinese economy, and president-elect is also expected to clamp down on Iranian oil exports. Oil has been on a downward trend since April on tepid Chinese demand and a surge in supply from outside of the OPEC Plus alliance, although the prospect of a ratcheting up in hostilities in the Middle East is keeping the market on the edge. And there are widespread expectations of a glut next year, but there is still a lot of uncertainty that could tighten balances.
जी आशुतोष मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के बहुत अच्छे जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
जी धन्यवाद आपका.
थैंक यू सो वेरी मच आशुतोष. एंड नाउ बिफोर वी क्लोज रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड स्पेशल कैंपेन that contributed over 2,000 crore rupees to the state exchequer since 2021. Domestic markets to focus on corporate earnings, FII and DII activities, amongst others, for the queues next week. And the global crude oil prices rise 3% last week. Brent ended the week near $74 per barrel. That's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye. Market Mantra. Market Mantra.